तो भजन के शब्द हैं, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए थे, क्यों लाए थे? प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु को था गेला महेश पंडित ठाकुर। तो वो महेश पंडित ठाकुर कहाँ चले गए? हे ना प्रभु को था गेला उद्धारण दत्त ठाकुर। उद्धारण दत्त ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कहाँ रूप गोस्वामी, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित हैं पावन, और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जोग, भट्ट जोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? एक काले को था गेला गोरा नटराज। गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु नर्तकों के राजा है? गोरे हैं, नर्तकों के राजा हैं। वो एक काले अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कुटे वो माथा, तो अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ूं अथवा अनले पसीबो अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांग गुणेर निधि को था गेले पावो, तो गुणों के भंडार गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं? से सब संगीरे संगे जे कैलो बिलास, जो जितने संगीत है भगवान के उन्होंने भगवान के संग बिलास किया। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना प्राप्त करके नरोत्तम दास रोते हैं। तो आज दो जो महापुरुषों के तिरुभाव हैं, तो उस विषय में कुछ हम चर्चा करना चाहेंगे कि कुछ विशेष ये योग बना है जो कि दो महापुरुषों का जो तिरुभाव आया है। तो गौर गणोदेश दीपिका में ये बताया गया है, सुबाहुर यो ब्रजे गोपो दत्त उद्धारणाख्य कहा। जो ब्रज में सुबाहु नाम के गोप सखा थे, गोप सखा यानी 12 जो विशेष सखा हैं, जैसे अष्ट सखियां हैं है ना, तो विशेष हैं। उसी प्रकार से द्वादश गोपाल, 12 गोपाल जो कृष्ण के और बलराम के जो 12 सखा हैं वो बहुत विशेष हैं, मतलब VIP है ना, 12 VIP फ्रेंड्स है ना। तो उनमें से सुबाहु नाम के जो सखा थे वो धारणदत्त ठाकुर हुए, और महेश पंडित श्रीमान महाबाहुर ब्रजे सखा। और जो महेश पंडित हैं तो वो ब्रज में सखा थे महाबाहु। अब इसमें क्या बड़े आश्चर्य की बात है कि इन दो महापुरुषों का जो तिरुभाव दिवस आज के दिन जो आ रहा है, तो इनमें कुछ समानता है। पहली समानता क्या है कि दोनों 12 गोपालों में से एक एक हैं, दोनों 12 गोपालों में से एक एक हैं, एक तो समानता ये है ना। दूसरी समानता क्या है? नाम की समानता, कि ब्रज में उद्धारण दत्त ठाकुर का नाम सुबाहु सखा है और महेश पंडित का नाम है महाबाहु सखा, सुबाहु महाबाहु, ये भी जो है मतलब एक जैसा नाम है ना, है ना, जैसे जय विजय की जोड़ी होती है ना, नंद सुनंद ये द्वारपाल हैं, इनकी जोड़ी है ना, और पुण्यशील सुशील ये भी द्वारपाल हैं वैकुंठ के, इनकी भी जोड़ी है, एक जैसे नाम होते हैं एक जोड़ी में। इसी प्रकार से 12 गोपालों में से जो है ये दो जो विशेष गोपाल हैं इनकी भी जोड़ी है, क्या है? सुबाहु और महाबाहु, महेश पंडित महाबाहु और धारणदत्त सुबाहु है ना। तो कितने मिलान हो गए, एक तो द्वादश गोपाल दोनों हैं और नाम में मिलान हुआ। तीसरा मिलान क्या है कि इन दोनों का वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव नहीं है, तो साल में एक ही दिन इनको याद किया जाता है, तो बहुत विशेष दिन है कि आज हम इनकी कृपा प्राप्त करें, जो साल में केवल एक ही दिन होता है, क्योंकि अक्सर वैष्णवों के आविर्भाव तिरुभाव दोनों होते हैं तो साल में 2 बार उनको याद कर लेते हैं, लेकिन इनका जो है आविर्भाव अज्ञात है। तो इसलिए तो तीसरी समानता ये भी हो गई, कितनी समानता हो गई, 3/4, 12 गोपाल हैं और नाम में समानता 2, हाँ दोनों के आविर्भाव अज्ञात हैं, तो 3 समानता हो गई है ना। और भी एक समानता होगी। अच्छा, तो ये जो है 12 गोपाल हैं, तो इनको हम मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि एक सूची है। पहले जो गोपाल हैं श्री दामा सखा, तो वे अभिराम गोपाल, चैतन्य लीला में अभिराम गोपाल थे। फिर सुदामा सखा जो ब्रज लीला में थे, वो द्वारका के सुदामा नहीं है, ब्रज के सुदामा सखा। तो सुंदर आनंद ये गौर लीला में है। फिर तीसरे महाबल सखा, ये जो है गौर लीला में कमलाकर पिपलाई हैं। फिर चौथे सुबल सखा, तो गौर लीला में गौरीदास पंडित हैं। फिर पांचवें अर्जुन सखा, ये भी अर्जुन पांडव अर्जुन नहीं है, अर्जुन सखा ये परमेश्वर दास गौर लीला में। फिर वसुदामा सखा छठे, तो धनंजय पंडित गौर लीला में। फिर महाबाहु सखा सातवें, जो कि महेश पंडित, जिनका तिरुभाव दिवस है। फिर स्तो कृष्ण सखा आठवें, ये पुरुषोत्तम दास गौर लीला में। फिर लवंग सखा नवे, तो काला कृष्णदास गौर लीला में। फिर दामा सखा दसवें, पुरुषोत्तम नागर गौर लीला में। फिर सुबाहु सखा ग्यारहवें, जो कि आज जिनका तिरुभाव दिवस है, ये हैं गौर लीला में उद्धारण दत्त है। और बारहवें कुसुमांसव सखा, तो ये गौर लीला में खोल बेचा श्रीधर है। तो आज सातवें नंबर के जो सखा हैं उनका, और ग्यारहवें नंबर के सखा, तो इनका जो है तिरुभाव दिवस है। तो ये मतलब कुछ विशेष समानता है। तो पहले हम सुनेंगे महाबाहु सखा के बारे में। तो चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु की जो शाखाएं हैं, है ना, तो उनका वर्णन आता है। तो महेश पंडित जो है नित्यानंद प्रभु की शाखाओं में, शाखा समझते, चैतन्य वृक्ष, चैतन्य वृक्ष जो है समझो कि वृक्ष की जड़ है, है ना, या तना भी समझो चैतन्य वृक्ष है, है ना। तो उसमें जो है एक नित्यानंद शाखा बहुत बड़ी शाखा है, चैतन्य वृक्ष से शाखा निकली, है ना। तो शाखा का मतलब है कि जड़ से ही जो है उनका संबंध है, जो कि पोषण होता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, जो भक्ति वृक्ष की जो है जो जड़ हैं या तना है, तो उनसे एक शाखा नित्यानंद की निकली है। फिर उनकी कई शाखाएं हैं, उनसे कई शाखाएं निकली नित्यानंद प्रभु से, जो जुड़े हुए लोग हैं, है ना। तो नित्यानंद की शाखाओं में जो सत्रहवीं शाखा है वो है महेश पंडित, सत्रहवीं शाखा महेश पंडित हैं, है? और ये सातवें गोपाल हैं, 12 गोपालों में से सातवें गोपाल हैं, है? ये अत्यंत उदार थे, ढक्का बजने पर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नाचा करते थे। इनकी विशेषता, जब ढक्का बड़े नगाड़ा बजे तो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के नाचा करते थे। तो इसमें जो प्यार है, महेश पंडित ब्रजेर उदार है गोपाल, ढक्का वादे नृत्य करे प्रेमे मातोयाल। जब ढक्का बजे नगाड़ा बजे तो कृष्ण प्रेम उनका जागृत होता था, है ना। तो इस तरह से कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता, और मातोयाल का मतलब कि मतवाले होकर के नृत्य करते, नशे में कृष्ण प्रेम का नशा जो है उनका बढ़ जाता है, उसमें जो है नृत्य करते थे। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुभाष्य बताते हैं, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत का जो भाष्य लिखा है वो अनुभाष्य है। तो उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि महेश पंडित का गाँव पालपाड़ा नदिया जिले में, पालपाड़ा गाँव है उनका महेश पंडित का, और जिला है नदिया, नदिया जिले में चाकदह रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर स्थित है इनका गांव, और पारसी गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि पहले महेश पंडित जिराट के पूर्व में मसीपुर या यसीपुर नामक गांव में रहते थे, और जब मसीपुर गंगा नदी के पाट में डूब गया तो वहां के विग्रहों को पालपाड़ा गांव लाया गया। तो ये भी आ गए, पालपाड़ा में आ गए। तो स्थान जो है इनका पालपाड़ा है ना। तो जो जन्म स्थान था वो गंगा जी में डूब गया, तो वो स्थान का तो अब जो है पता ही नहीं। तो पालपाड़ा गांव जो बेले डांगा बेरे ग्राम सुखसागर चांदुड़े और मनसापोता नामक गांवों के बीच में बसा है। कुल 14 गांव है, 14 गांवों का जो है एक मतलब वो है ग्रुप समूह है, 14 गांव है और पूरा पड़ोस 5 नगर परगना कहलाता है। कहा जाता है कि महेश पंडित पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में सम्मिलित हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु की शाखा नित्यानंद प्रभु के संगी है, ये महेश पंडित भी नित्यानंद प्रभु के संगी है। तो जहाँ नित्यानंद है तो वहाँ महेश पंडित है। तो जब नित्यानंद प्रभु आए थे पानीहाटी में तो बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी पानीहाटी में, छेड़ा दधी महोत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया था। तो नित्यानंद प्रभु के साथ थे और नित्यानंद प्रभु के अगर साथ अगर थे तो जब वो महोत्सव हुआ था चीड़ा दधी तो नित्यानंद प्रभु के साथ ही बैठे, है ना, कि नित्यानंद प्रभु चबूतरे में बैठे थे, है ना, और चबूतरे में जो है उनके जो साथ के उनके बराबर के जो लोग थे वो चबूतरे में बैठे और बाकी सब नीचे बैठे, है ना। और नीचे बैठे तो एक सर्किल बनाया, फिर उसके बाहर दूसरा सर्किल बनाया, फिर उसके बाहर, ऐसे सर्किल में सब लोग बैठे थे चीड़ा दधी महोत्सव में, ताकि चबूतरे को घेरा, चबूतरे का घेरा बना बना करके बैठे, पहला घेरा फिर उसके बाद दूसरा घेरा उस फिर तीसरा घेरा और बड़ा, ऐसे घेरे में सब लोग बैठे। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का दर्शन करना है। और जो सबसे छोटा घेरा था वो नित्यानंद प्रभु का था जिसमें उनके संगी थे और चबूतरे के ऊपर बैठे थे। तो महेश पंडित कहाँ बैठे होंगे? चबूतरे के ऊपर बैठे होंगे, नित्यानंद प्रभु के VIP संगी, है न। तो पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में सम्मिलित हुए थे। इस समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर भी सम्मिलित हुए थे और महेश पंडित ने इस अवसर पर उन्हें देखा था। महेश पंडित ने किसको देखा था? नरोत्तम दास ठाकुर को देखा था। महेश पंडित के मंदिर में गौर नित्यानंद, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा गोविंद के विग्रहों के साथ साथ सालग्राम शिला भी है। तो महेश पंडित का जो मंदिर कहाँ पर है? पालपाड़ा, है ना। तो वहाँ पर क्या क्या है? गौर नित्यानंद के अर्चा विग्रह हैं, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा गोविंद, है ना। तो तीनों हैं, मदन मोहन और गोविंद गोपीनाथ, है ना, और गौर नित्यानंद, तो ये जो है। और फिर इनके साथ सालग्राम शिला भी है। तो इस तरह से महेश पंडित के बारे में हमने कुछ बातें सुनी हैं। अब हम सुनेंगे उद्धारण दत्त ठाकुर के बारे में। तो तारा उद्धारण दत्त ठाकुर जो है नित्यानंद प्रभु की एक शाखा है। और ये किसने कितने नंबर की शाखा हैं? ये हैं है? ये हैं 26वीं शाखा, 26वीं शाखा है। वो तो द्वादश गोपाल में 11 नंबर के गोपाल हैं, ये नित्यानंद प्रभु की जो शाखाएँ हैं तो उनमें अलग अलग भक्तों के नाम बताएंगे। वीरचंद्र प्रभु नित्यानंद प्रभु की एक शाखा है, ऐसे गिना करके। तो ये जो है उद्धारण दत्त 26वीं शाखा है। तो इनके बारे में लिखा है कि 12 गोपालों में से 11वें गोपाल उद्धारण दत्त ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के उन्नत भक्त थे। ये नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से सेवा करते थे। इसमें प्यार है, महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण सर्व भावे सेवे नित्यानंदे रे चरण। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जो बातें बता रहे हैं वो बड़ी अद्भुत हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उद्धारण दत्त ठाकुर के बारे में। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गौर गणोद्देश दीपिका 129 के अनुसार उद्धारण दत्त ठाकुर पहले वृंदावन के सुबाहु नामक ग्वालबाल थे। इनको पहले श्री उद्धारण दत्त कहते थे। ये सप्तग्राम के रहने वाले थे। कहाँ के? सप्तग्राम के रहने वाले थे। सप्तग्राम में कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी भी थे, है ना, सप्तग्राम के जमींदार, है ना, इनके दोनों मतलब पिता और चाचा, बहुत बड़े जमींदार थे सत्यग्राम के, है ना। तो तारणदत्त ठाकुर सत्यग्राम के रहने वाले थे, जो हुगली जिले में 30 बीघा स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और धारण ठाकुर के समय में सप्तग्राम एक बहुत बड़ा नगर था, जिसके अंतर्गत अभी सप्तग्राम कौन कौन से हैं नाम बताए जाए। प्रभुपाद नाम बता रहे हैं सप्तग्राम के, क्या क्या नाम है। पहला ग्राम है वासुदेवपुर, दूसरा बांसबेड़िया, तीसरा कृष्णपुर, चौथा नित्यानंदपुर, पांचवा शिवपुर, और छठा शंखनगर, और सातवा सप्तग्राम। तो सप्तग्राम पूरा भी कहलाता है सातों ग्राम मिला करके, और उनमें से भी एक सप्तग्राम एक ग्राम है। तो ये जो है सात थे। अब कलकत्ता का जो विकास हुआ है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कलकत्ता का जो विकास हुआ है वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुआ है। कलकत्ता का विकास, पहले कलकत्ता का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, नगर कलकत्ता नगर जो बना ना, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बना है। और किन के द्वारा विकास हुआ है, व्यापार में कलकत्ता का जो व्यापारिक विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, विशेषतः सुवर्ण वणिक जाति द्वारा किया गया है। सुवर्ण वणिक जाति है ना, इनके द्वारा हो, जो सप्तग्राम से पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार जमाने और अपने घर बनाने के लिए आए, सप्तग्राम से आए। तो धारणदत्त ठाकुर के बाद जो है ब्रिटिश शासन तो बाद में शुरू होना है ना, जब धारणदत्त ठाकुर थे उस समय तो मुसलमान राज्य था, है ना। तो ब्रिटिश शासन जब आया तो कलकत्ता का जो है विकास हुआ, है ना। और ये सप्तग्राम के जो सुवर्ण वणिक जाति के लोग थे वो वहाँ पर उन्होंने अपने घर मकान बनाए और अपना व्यापार बढ़ाया, तो कलकत्ता का विकास हुआ। ये कलकत्ता के सप्तग्राम में व्यापारी कहलाते थे, कलकत्ता के भी सप्तग्राम जो है ये नाम फिर भी बना रहा कलकत्ता में जाकर के भी, और क्या कहलाते हैं, सप्तग्रामी, सप्तग्रामी व्यापारी कहलाते थे। और उनमें से अधिकांश लोग मल्लिक और सिल परिवारों के थे। मल्लिक परिवार, मल्लिक जो है मुसलमानों के शासन में कुछ लोगों को जो है मल्लिक उपाधि दी गई थी। मल्लिक का मतलब मालिक है, हम लोग बोलते हैं स्वामी, है ना। तो अधिकारी, ऐसे मुसलमानी शासन में मल्लिक उपाधि दी जाती थी। तो मल्लिक परिवार भी उसमें से जो है सुवर्ण वणिक में एक मल्लिक परिवार हुआ, है? और दूसरा सिल परिवार हुआ। सिल उदाहरण ठाकुर की ही तरह आधे से ज्यादा कलकत्ता इसी जाति से संबंधित था। मतलब सुवर्ण वणिक जो सप्तग्रामी व्यापारी जो है आधे से ज्यादा थे कलकत्ता की आबादी में, सोचिए आधे से ज्यादा लोग जो है इसी जाति के थे सप्तग्राम के। हमारा पैतृक परिवार भी इसी जिले और जाति से था। प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद का जो पिता का जो परिवार है ना, तो पिता के जो वंशज हैं तो इसी परिवार से हैं, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं हमारा पैतृक परिवार भी इसी जिले और जाति से था। कलकत्ता के मल्लिक दो परिवारों में विभाजित हैं, सिल परिवार और डे परिवार। उसमें से डे हैं, प्रभुपाद जो है डे परिवार के हैं। तो मल्लिक जो है दो परिवारों में विभाजित हैं। डे परिवार के सारे मल्लिक मूलतः एक ही परिवार तथा गोत्र के हैं। हम भी पहले डे परिवार शाखा से संबंधित थे। तो प्रभुपाद के पहले हम डे परिवार शाखा से संबंधित थे। वंश के अनुसार ये प्रभुपाद अपना वंश बता रहे हैं, लेकिन जो शिष्य परंपरा के अनुसार तो ब्रह्म संप्रदाय में प्रभुपाद जो है कि जो गुरु परंपरा वो ब्रह्मा जी से आ रही है। तो एक इस तरह से भी परंपरा है शिष्य परंपरा, और एक वंश परंपरा है। वंश परंपरा भी बहुत पवित्र है, प्रभुपाद की वंश की परंपरा भी बहुत पवित्र है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं हम भी पहले डे परिवार शाखा से संबंधित थे, इसलिए इनका नाम क्या था, अभय चरण डे। प्रभुपाद का नाम था अभय चरण डे, है ना। और इनके पिता का नाम था गौर मोहन डे, है ना, डे। जिसके सदस्यों को मुसलमान शासकों से मल्लिक की पदवी प्राप्त हुई थी। मुसलमान शासन में इनको सम्मान मिला था, इसलिए मल्लिक कहलाते थे ये लोग, है ना। चैतन्य भागवत अंतखंड अध्याय 5 में कहा गया है ना। कहां पर? चैतन्य भागवत का अंतखंड। चैतन्य भागवत के 3 खंड हैं, आदि खंड, मध्य खंड, अंतखंड। तो अंतखंड के 5वें अध्याय में कहा गया है कि उदाहरण दत्त एक महान और उदार वैष्णव थे। ये नित्यानंद प्रभु की पूजा करने का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे। जन्म से अधिकार नित्यानंद प्रभु की पूजा का इनको प्राप्त हुआ। क्यों? कि जन्म धर्म के भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु ब्रजलीला में बलराम थे तो उनकी संगति में थे, है ना। तो जन्म से ही नित्यानंद प्रभु की सेवा का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे। ये भी कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु खड़दह में कुछ काल तक रहने के बाद सप्तग्राम आए और वहाँ उदाहरण दत्त के मकान में ठहरे नित्यानंद प्रभु, है ना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण मकान है वो उदाहरण दत्त का है, तो नित्यानंद प्रभु जो है वहाँ ठहरे। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से पूरे गौड़ देश में हरि नाम का वितरण कर रहे थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि मैं तो अब नहीं ये काम कर सकता क्योंकि माता शची के आदेश से मैं बंधा हूँ कि मैं जगन्नाथपुरी में ही रहूँ, लेकिन जो मेरा कार्य है, जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, वो कार्य आप को अब सौंप रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को वो कार्य सौंपा, हरि नाम का प्रचार करना। तो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य की आज्ञा से जगह जगह हरि नाम का प्रचार करते थे। तो उनके जितने भी संगी थे वो सब उनके साथ रहते थे, है ना। तो धारण दत्त के मकान में नित्यानंद प्रभु ठहरे। और धारण दत्त का संबंध जिस स्वर्ण वणिक जाति से था वो वास्तव में वैष्णव जाति थी। स्वर्ण वणिक माने सोने का व्यापार, है ना। तो वैष्णवों का ये जाति है, वैष्णव है स्वर्ण वणिक। और प्रभुपाद भी स्वर्ण वणिक परिवार के हैं, है ना। और प्रभुपाद ने सोने का व्यापार भी किया, ये पूरे संसार में जो हरिनाम फैलाया, असली सोना क्या है, यही तो है। तो प्रभुपाद ने सोने का व्यापार किया, लेकिन ये सोना दूसरे प्रकार का है, हरिनाम, हरिनाम, है ना। और गीता और भागवत का संदेश असली सोना है, तो प्रभुपाद ने ये सोने का व्यापार किया। तो प्रभुपाद बहुत बड़े व्यापारी हैं पूरी दुनिया में, और उनके व्यापार के केंद्र सब इस्कॉन मंदिर। कोई भी आता है, अपना समय देता है, कीमत क्या है? समय है, समय दो आप मंदिर में, और क्या लो? सोना लो, ठीक है। तो यहाँ पर कीमत क्या ली जाती है? समय की। समय देते हैं लोग और हरि नाम लेते हैं सोना, और चैतन्य चरितामृत का संदेश सोना, गीता का संदेश सोना, भागवत का संदेश सोना। तो सब सोने के जो है व्यापार के केंद्र हैं, सोने का व्यापार हो रहा है यहाँ पर भी, है ना। तो प्रभुपाद स्वर्ण वर्णिक परिवार से आए तो सोने का व्यापार किया उन्होंने प्रभुपाद ने, है ना। एक सोना होता है सोना क्या आप सोते तो अगर वो सोना लोगे तो ये सोना नहीं मिलेगा। दो प्रकार का सोना है। अरे क्लास में आप सोते हैं तो वो सोना अगर लोगे तो ये सोना नहीं मिलेगा, है ना। तो हम वो सोने का व्यापार नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसके सदस्य साहूकार और स्वर्ण के व्यापारी थे। बहुत काल पूर्व बल्लाल सेन एक राजा था, बहुत काल पूर्व बल्लाल सेन नाम का एक राजा था, और स्वर्ण वणिक जाति में बहुत बड़े साहूकार थे गौरी सेन। तो इनमें अनबन हो गई। अब प्रभुपाद एक ऐतिहासिक घटना बता रहे हैं कि जो स्वर्ण वणिक जाति, जो वैष्णव जाति बहुत सम्मानित थी, मुसलमानों के शासन में बहुत सम्मान मिला, मल्लिक उपाधि मिली, लेकिन जो बल्लाल सेन था, हाँ हाँ, ये राजा जो है ये इसके साथ इनकी अनबन हो गई। तो बल्लाल सेन गौरी सेन से उधार लेकर मनमाना खर्चा करता था, हाँ, इसलिए गौरी सेन ने धन देना बंद कर दिया। कि कितना कर्जा लोगे तुम? कर्जा ले रहे हो और खर्चा कर रहे हो और वापस कर नहीं रहे, और कर्जा मांग रहे और उधार मांग रहे, तो क्या किया गौरी सेन ने? बंद कर दिया देना, हाँ, कि पहले का तो देता नहीं है और लेता रहा है, लेता जा रहा है, तो बंद कर दिया। तो बल्लाल सेन ने इसका बदला स्वर्ण वणिकों को जाति से बहिष्कृत कराने का षड्यंत्र बनाकर किया। तो षड्यंत्र किया तो जाति से बहिष्कृत कर दिया इनको। तो जाति से बहिष्कृत, तो ना तो ये ब्राह्मण में है, ना क्षत्रियों में है, ना वैश्यों में है, इनको जो है तीनों जातियों से अलग कर दिया, जबकि वैष्णव तो सबसे ऊपर होता है, ब्राह्मणों से भी ऊपर वैष्णव होता है, है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में नहीं है, तो फिर चौथे पर कौन रह गए? शूद्र। तो उस बल्लाल सेन ने जो है इनको समाज में मतलब नीचा कर दिया, है ना, बहिष्कृत कर दिया, मतलब अन्याय ही अन्याय है। एक तो पैसा दिया, खा लिया पैसा, पैसा वापस नहीं किया, और उल्टा और बदनाम कर दिया। किंतु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से स्वर्ण वर्णिक जाति फिर से ऊपर उठ गई। नित्यानंद प्रभु ने फिर उठाया, पहले मुसलमान शासन में इनका सम्मान हुआ था मल्लिक, और नित्यानंद प्रभु ने इनको उठाया ऊपर, है ना, कैसे, हरि नाम कीर्तन के द्वारा। चैतन्य भागवत में कहा गया है, यतेक वणिक कुल उद्धारण हैते पवित्र हैल द्विधा नाहिक यहाते। इसमें संदेह नहीं कि स्वर्ण वणिक समाज के सारे सदस्य श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा फिर से पवित्र बना दिए गए, यानी समाज में क्या हो गए, बहुत पवित्र माने गए, है ना। अब नित्यानंद प्रभु इनके समाज में जब हरिनाम कीर्तन करने के लिए आए, पूरा सप्तग्राम नित्यानंद प्रभु ने क्या कर दिया, पवित्र कर दिया, और सप्तग्राम के जितने भी सुवर्ण वणिक थे वो सब पवित्र हो गए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सप्तग्राम में अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का षडभुजी विग्रह है, अभी छह भुजाओं वाला विग्रह, जो चैतन्य महाप्रभु छह भुजाओं का विग्रह कहाँ दिखाया, किसको दिखाया, सारों भट्टाचार्य को दिखाया, कहाँ दिखाया, जगन्नाथपुरी में, है ना। तो षडभुजी विग्रह सप्तग्राम में है, जिसकी पूजा उदाहरण दत्त ठाकुर स्वयं करते थे, वो षडभुज विग्रह। श्री चैतन्य महाप्रभु दाएं नित्यानंद प्रभु का और बाएं गदाधर प्रभु का विग्रह है, दाएं नित्यानंद और बाएं गदाधर, है ना। तो ये क्या है, सीता राम लक्ष्मण, है ना, राम के दाएं लक्ष्मण हैं और बाएं सीता जी हैं, है ना। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु राम ही हैं, उनके दाएं जैसे लक्ष्मण है तो नित्यानंद प्रभु हैं, और बाएं सीता जी तो वो गदाधर पंडित, है ना। तो इस तरह से इसके अतिरिक्त राधा गोविंद मूर्ति और शालग्राम शिला भी है, और सिंहासन के नीचे श्री उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि है, छवि माने चित्र है, उदाहरण दत्त ठाकुर का चित्र है, हैं, सिंहासन के नीचे मतलब सीढ़ी, अलग अलग सीढ़ियों में रखते हैं ना, जैसे यहाँ पर भी, तो नीचे जो है सिंहासन की उदाहरण दत्त ठाकुर का चित्र है। अब मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल है, और इसके सामने माधवी लता का पौधा लगा है, रूपा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि मंदिर के सामने बहुत बड़ा हॉल है और उसके सामने माधवी लता का पौधा लगा है। ये मंदिर बहुत छायादार, शीतल और अच्छी जगह पर स्थित है। सन 1967 में जब हम अमेरिका से लौटे थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, सन 1967 में जब अमेरिका से लौटे थे, तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने यहाँ आने के लिए हमें बुलाया, तो प्रभुपाद को बुलाया था, प्रभुपाद जिन भक्तों के साथ में आए थे उनके साथ में बुलाया, और इस तरह हमें अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों सहित इस मंदिर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उदाहरण दत्त ठाकुर स्वयं जिस विग्रह की सेवा करते थे, पूजा करते थे, उसका दर्शन करने का अवसर प्रभुपाद कहते हैं हमें प्राप्त हुआ, है ना। पहले अपने बाल्यकाल में हमने अपने माता पिता के साथ इस मंदिर के दर्शन किए थे, जब प्रभुपाद छोटे बालक थे तो माता पिता के साथ आए थे, और दूसरी बार आए अपने शिष्यों के साथ, क्योंकि सुवर्ण वणिक जाति के सारे लोग उदाहरण दत्त ठाकुर के इस मंदिर में विशेष रुचि दिखलाते हैं। जितने डे परिवार के लोग हैं और मल्लिक परिवार के लोग हैं, वो सब जो है इस मंदिर में आते हैं विशेष रूप से। श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, 1876 ईस्वी में, कितना, 1876 ईस्वी में, तो प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में, हाँ, तो उसके भी 76 यानी 20 साल पहले, है ना, प्रभुपाद के जन्म के भी 20 साल पहले 1876 ईस्वी में निताई दास नामक एक बाबा जी ने इस मंदिर के लिए 12 बीघे यानी 4 एकड़ की भूमि दान में प्राप्त की थी। इस मंदिर के लिए, मंदिर को जो है अगर भूमि मिल जाए तो इससे मंदिर का पूरा खर्चा चलता है, है ना। बाद में इस मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ा गई, किंतु 1899 में यानी कितने साल बाद, 20 और 3 23 साल के बाद हुगली के उपन्यायाधीश सुप्रसिद्ध बलराम मल्लिक और धनी सुवर्ण वणिक जाति के अनेक सदस्यों के सहयोग से मंदिर का प्रबंध काफी सुधर गया, क्योंकि अब उप न्यायाधीश उसको क्या बोलेंगे, चीफ जस्टिस और उसके नीचे होता होगा न्यायाधीश, है ना, तो चीफ जस्टिस के नीचे जो भी होते हों, सब जस्टिस हो या जो भी हो, तो जो वो क्या थे, बलराम मल्लिक, तो मल्लिक परिवार के थे, तो उन्होंने इस मंदिर का फिर बहुत विशेष व्यवस्था कराई और धनी सुवर्ण वणिक जाति के बहुत से सदस्यों ने मिलकर के मंदिर का प्रबंध का भी सुधारा। अभी 50 वर्ष भी नहीं हुए और धारण दत्त ठाकुर के परिवार के एक सदस्य जगमोहन दत्त ने मंदिर में और धारण दत्त ठाकुर का काष्ठ का विग्रह स्थापित किया था, लकड़ी का विग्रह स्थापित किया था, किसका, उदाहरण दत्त ठाकुर का, जिसे किंतु अब वो मूर्ति वहां नहीं है, इस समय उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि की पूजा की जाती, वो मूर्ति चली गई, उदाहरण दत्त ठाकुर का केवल चित्र ही वहां रह गया, उसी की पूजा होती है। उदाहरण दत्त ठाकुर का काष्ठ विग्रह श्री मदन मोहन दत्त उठा ले गए और अब श्रीनाथ दत्त द्वारा उसकी पूजा सालग्राम शिला के साथ साथ की जाती है, तो वो मेरे ख्याल से सप्तग्राम में है ना। उदाहरण दत्त ठाकुर नई हाटी में जो कटवा से 1.5 मील उत्तर में है, कटवा स्थान बहुत पवित्र है, क्या है विशेष घटना हुई क्या, हाँ श्री चैतन्य का मुंडन हुआ था, संन्यास हुआ था श्री चैतन्य का, तो कटवा से 1.5 मील दूरी उत्तर में क्या है नेहाटी, वहां पर एक बड़े जमींदार की जायदाद के प्रबंधक ये थे, कौन, उदाहरण दत्त ठाकुर, दीवान, उसको दीवान बोलते हैं, जायदाद का प्रबंध करने वाले दीवान थे उदाहरण दत्त ठाकुर। इस शाही परिवार के ध्वंस अवशेष अब भी देहाट स्टेशन के निकट देखे जा सकते हैं, क्योंकि उदाहरण दत्त ठाकुर जायदाद के प्रबंधक थे, अतएव इसे उदाहरणपुर भी कहते हैं, इसका नाम ही उदाहरणपुर बन गया। उदाहरण दत्त ठाकुर के निताय गौर विग्रहों की स्थापना की थी, नहीं, उदाहरण दत्त ठाकुर ने निताय गौर विग्रहों की स्थापना की थी, जिन्हें बाद में जमींदार के घर ले जाया गया, जब उदाहरण दत्त ठाकुर नहीं रहे तो जमींदार के घर में आ गए निताय गौर, जो वन ओ यारी बाड़ कहलाता है। श्री उदाहरण दत्त ठाकुर आजीवन गृहस्थ बने रहे, इनके पिता का नाम श्रीकर दत्त था और माता का नाम भद्रावती था और पुत्र का नाम श्रीनिवास दत्त था। तो इतना जो है प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है हमें। अब कुछ और भी इसमें चर्चा है कि चैतन्य भागवत में ये वर्णन आता है बहुत विस्तार से कि नित्यानंद प्रभु ने सप्तग्राम में आकर के कितना संकीर्तन किया, उस संकीर्तन का जो है बहुत विस्तृत वर्णन है, तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। नित्यानंद प्रभु कुछ दिन खड़दे ग्राम में रहकर पीछे सब भक्तों सहित सप्तग्राम में आए। नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, संकीर्तन, है ना, और कैसा संकीर्तन होता होगा उस समय नित्यानंद प्रभु का, है ना, सप्तग्राम में आए। उस सप्तग्राम में सप्त ऋषियों का स्थान है, सप्त ऋषि प्रत्येक मनवंतर में सप्त ऋषि बदलते हैं, तो सप्त ऋषियों का स्थान है प्रत्येक सप्तग्राम में, तो सप्तग्राम नाम सप्त ऋषियों के नाम से पड़ा है, सप्त ऋषियों का स्थान है। और सप्तग्राम में सप्त ऋषियों का स्थान है जो और जगत में त्रिवेणी घाट नाम से विदित है, तो यहाँ भी त्रिवेणी घाट यानी गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, एक तो त्रिवेणी वहाँ है प्रयाग में और सप्तग्राम में भी त्रिवेणी है। पहले सप्त ऋषियों ने इसी गंगा घाट पर तप करके गोविंद के चरण कमल प्राप्त किए थे, सप्त ऋषियों ने, सप्त ऋषि बहुत बड़े आचार्य हैं कि पूरे मनमंत्र ये वेदों का संदेश देते हैं, और एक मनमंत्र 71 चतुर्युगी का होता है, 30 करोड़ साल का होता है, तो सप्त ऋषि जो है ये वेदों का संदेश देते हैं, है ना, तो उन्होंने तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त किए थे इसी गंगा घाट पर। गंगा यमुना और सरस्वती देवियों का इसी स्थान पर एकत्र मिलन है। सभी लोगों में त्रिवेणी घाट प्रसिद्ध है जिसके दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों के साथ परम आनंद से इसी घाट पर स्नान किया। त्रिवेणी के तट पर भाग्यवान और धर्मदत्त के घर पर नित्यानंद प्रभु ने निवास किया और धर्मदत्त ने निष्कपट मन वाणी व शरीर द्वारा नित्यानंद चरण कमलों की सेवा की। धर्मदत्त के घर में नित्यानंद प्रभु ठहरे और उन्होंने मन वाणी शरीर के द्वारा, केवल एक नहीं है, तीनों के द्वारा, मन वाणी और शरीर के द्वारा नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा की। धर्मदत्त को श्री नित्यानंद की सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया। इससे बढ़कर और क्या भाग्य हो सकता है। नित्यानंद स्वरूपे रे सेवा अधिकार पाई लेने उद्धारण की वह भाग्य आर। नित्यानंद जन्म जन्म के ईश्वर हैं। नित्यानंद प्रभु जन्म जन्म के ईश्वर हैं और धर्मदत्त भी इनके जन्म जन्म के दास हैं। कैसे दास हैं? जन्म जन्म के दास। किसके? नित्यानंद प्रभु के। और नित्यानंद प्रभु इनके जन्म जन्म के ईश्वर हैं, जन्म जन्म के दास, है ना। भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता, कभी जन्म जन्म का कोई मालिक नहीं होता, है ना। इस जन्म में ही जो है जो मालिक है वो नीचे चला जाता है, नौकर जो है ऊपर उठता है, और नौकर चाहता है कि मैं मालिक से ऊपर उठ जाऊँ। लेकिन जो है भगवान के साथ संबंध ऐसा कभी नहीं होता है। नित्यानंद प्रभु जो है मालिक हैं, तो जन्म जन्म के मालिक हैं, और ये जो है जन्म जन्म के दास हैं। जो दास को जो है इसी में संतुष्टि होती है कि वो दास बना रहे। वो यही चाहता कि मैं दास हमेशा बना रहूं, कभी नहीं चाहता कि मैं मालिक बनूं, है ना। तो ये जो है विशेष ये संबंध होता है भगवान के साथ में। और धर्मदत्त के संबंध से जहाँ तक वैश्य कुल था सब पवित्र हो गया, पूरा पूरा कुल पवित्र हो गया, है ना। उस समय सप्तग्राम पूरा भरा हुआ था ना, है ना, तो पूरा पवित्र हो गया सत्यग्राम, इसमें कोई संदेह नहीं। नित्यानंद का अवतार वणिकों का उद्धार करने को हुआ था। विशेष अवतार नित्यानंद प्रभु का किस लिए हुआ था? इन वणिकों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि ये लोग क्या हो गए थे, बहुत गिर गए थे। किसने गिराया इनको? किसने गिराया? बल्लाल सेन ने गिराया, है ना। और किस तरह से घोषणा कर दी, ना ये ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, तो फिर क्या हो गए? शूद्र हो गए, है ना। तो शूद्र बना दिया, जबकि लोग वैष्णव थे पहले से, है ना। और नित्यानंद प्रभु ने फिर इनको परम वैष्णव बना दिया, है ना। तो बहुत जो है ये पवित्र हो गए। नित्यानंद का अवतार वणिकों का उद्धार करने को हुआ और वणिकों के लिए इन्होंने प्रेम भक्ति का अधिकार दे दिया। स्वयं नित्यानंद प्रभु ने सप्तग्राम के प्रत्येक वैश्य के घर में कीर्तन विहार किया। सोचिए, प्रत्येक घर में कीर्तन किया, एक एक घर में। और कितने घर होंगे सप्तग्राम में? 7 गांव, कितने घर होंगे? प्रत्येक घर में कीर्तन किया, इतनी कृपा क्या हो सकती कहीं? प्रत्येक घर में कीर्तन करें। नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक घर में कीर्तन किया और सब वणिकों ने नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेकर सब प्रकार से सेवा की। सब वैश्यों को कृष्ण भजन करते देखकर सब जगत के मन में चमत्कार हुआ। इतना होता नहीं कभी। कुछ लोग तो उल्टे हो जाते हैं ना, कुछ लोग जो है उदासीन रहते हैं, ना इधर के ना उधर के बीच में रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं उल्टे। लेकिन सप्तग्राम में कोई उल्टा नहीं है, सब सीधे, सभी वैष्णव। और नित्यानंद प्रभु ने किसी घर को नहीं छोड़ा, प्रत्येक घर में कीर्तन किया। सब वैश्यों को कृष्ण भजन करते देखकर सब जगत के मन में चमत्कार हुआ। इस संसार का एक बहुत बड़ा चमत्कार कि 7 गांव इकट्ठे और प्रत्येक घर में कीर्तन हो, है ना। यहाँ पंजाबी बाग में भी ऐसा नहीं है कि प्रत्येक घर में कीर्तन होता हो, है ना। और आप जाएंगे तो नाराज भी हो सकते हैं, आप कीर्तन करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, है ना। तो पंजाबी बाग में भी जो है ऐसा नहीं है, सत्यग्राम में ऐसा हुआ। पूरे जगत का चमत्कार, ये आश्चर्य कोई नहीं जानता। संसार के बड़े बड़े आश्चर्य, 7 आश्चर्य बोलते हैं ना भाई, 7 आश्चर्य, है ना। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, सात आश्चर्यों से भी सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सप्तग्राम में नित्य प्रभु ने क्या कर दिया है? सबसे बड़ा आश्चर्य नित्यानंद प्रभु की अपार महिमा है। कैसी महिमा है? अपार, कोई पार नहीं कर सकते। जिन्होंने अधम मूर्खों और बणिकों का उद्धार किया, नित्यानंद प्रभु भक्तों के सहित सप्तग्राम में लीला से ही संकीर्तन करने लगे। सप्तग्राम में जितना कीर्तन विहार हुआ वो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं हो सकता है। क्या समझे? 100 साल में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है सप्तग्राम में नित्यानंद प्रभु ने जो कीर्तन किया है। 100 वर्षों में भी है ना। सप्तग्राम में जत हिला कीर्तन बिहार, सप्त बत्सरे उतहा नारी वर्णिवार। जैसे पहले नदिया नगर में सुख हुआ था, नदिया में भगवान चैतन्य ने कीर्तन किया, उसी प्रकार सप्तग्राम में हुआ, नित्यानंद प्रभु ने सप्तग्राम में किया। श्री चैतन्य ने नदिया नगर को पवित्र किया, नवद्वीप, वो नवद्वीप है, वही सप्तग्राम, ये 7 गांव। तो नित्यानंद प्रभु के 7 गांव और चैतन्य महाप्रभु के 9 द्वीप है ना, तो दोनों पवित्र हुए। इसी प्रकार सप्तग्रामपुर में हुआ, जो नदियापुर में हुआ नदिया नगर में, वो सप्तग्रामपुर में हुआ। रात्रि अथवा दिन में भूख प्यास नींद भय कुछ भी नहीं होता था किसी को। रात दिन ना किसी को भूख लगती है, ना किसी को प्यास लगती है, ना किसी को नींद आती है, ना किसी को डर लगता है। अगर आपको भूख ना लगे तो आप डर जाते हैं कि अब क्या होगा, भूख नहीं लग रही है। अगर प्यास ना लगे तो आप डर जाएंगे हैं, पानी ना पीने से अब क्या होगा, बहुत डर लगता है। ना किसी को भूख लगती है, ना किसी को प्यास लगती है, ना नींद आती है, और नींद आए तो आपको कितना डर लगता है, नींद नहीं आ रही, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। मैं भी बड़ा चिंतित हो जाता हूँ, मुझे 2:45 बजे उठना है मंगल आरती में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सो जाऊँ, और नींद नहीं आती तो बड़ी चिंता होती है। जैसे भी मुझे उठना ही है तो 2:45 बजे तो उठना ही है हर हालत में, लेकिन फिर बड़ी बाधा होती है, नींद की बड़ी बाधा होती है। जाते हैं मंगल आरती में लेकिन बड़ी बाधा होती है नींद की, है ना। लेकिन किसी को बाधा नहीं होती है, ना नींद की बाधा होती है, ना नींद आती है, ना भूख की बाधा होती है, ना प्यास की बाधा होती है। सप्तग्राम में कैसा हो, ऐसा हुआ, रात और दिन, दिन रात ना भूख ना प्यास ना नींद, तो फिर क्या कर रहे हैं सब लोग, कीर्तन, हरे कृष्णा हरे बोल। सब दिशाएं हरि संकीर्तनमय हो गई, सब दिशाएं। नित्यानंद प्रभु प्रत्येक घर में बाजार बाजार व चौराहे चौराहे पर प्रेम से कीर्तन विहार करते थे। रात्रि दिन ऐछो दा तृष्णा नाही निद्रा भय, सर्वे देगे हैला हरि संकीर्तनमय। प्रति घरे घरे प्रति नगरे चत्वरे नित्यानंद महाप्रभु कीर्तन बिहरे। नित्यानंद के आवेश को देखकर जगत में ऐसा कोई नहीं था जो बेहबल ना हो जाए। उनका आवेश ऐसा था, बेहबल दूसरों की तो क्या बात, जो विष्णुद्रोही यवन थे वे भी उनके चरण कमलों के शरण में आ गए। यवन मुसलमान, मुसलमानों का शासन था, वो भी आ गए नित्यानंद प्रभु की शरण में, मुसलमान लोग भी आ गए, है ना। और मुसलमानों के नेत्रों की प्रेम धारा देख करके, मुसलमानों के नेत्रों से प्रेम धारा जो बह रही थी उसको देख करके ब्राह्मण अपने को बार बार धिक्कारते थे कि हम बेकार ब्राह्मण हैं, हम तो बेकार के ब्राह्मण हैं। क्या समझे? सत्यग्राम में नित्यानंद प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मुसलमान लोग जो प्रेम के आंसू बहाते थे हैं, उनको देख करके कि उनको लज्जाती थी, ब्राह्मणों को हम जन्म से ब्राह्मण हैं, हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी तपस्या को धिक्कार है, हमारे मंत्र को धिक्कार है, वेद अध्ययन को धिक्कार है, और ये जन्म के क्या हैं, गौ हत्यारे, और इनको जो है प्रेम प्राप्त हो गया नित्यानंद प्रभु की कृपा से। ब्राह्मण अपने को बार बार धिक्कारते थे, जिसे कहते हैं धिक्तान धिक्तान, मृदंग बोलता है धिक्तान धिक्तान, जब कीर्तन होता है तो मृदंग क्या बोलता है, धिक्तान धिक्तान, यानी धिक्कार है उनको जो नहीं कर रहे हैं कीर्तन, उनको धिक्कार है, तान है? धिक्तान, तान माने उनको धिक्कार है, जो नहीं आ रहे कीर्तन उनको धिक्कार है, मृदंग बोलता है है ना। लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या बोलते थे, धिक माम यानी मुझे धिक्कार। किसको देख करके? मुसलमानों को देखे। क्या मुसलमान क्या करते थे? प्रेम के अश्रु बहाते थे। तो मृदंग बोलता धिक्तान धिक्तान, और ब्राह्मण बोलते थे धिक माम मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, है? तो ये ब्राह्मण लोग जो है अपने को बार बार धिक्कारते थे। महाशय अवधूत चंद्र की जय हो। अवधूत चंद्र कौन? नितन बहु। अवधूत चंद्र की जय हो जिनकी कृपा से ऐसा आनंद हो रहा था। नित्यानंद ने सप्तग्राम में कौतुकपूर्ण विहार किया। जय जय अवधूत चंद्र महाशय जहां रे कृपाए हे न सब रंग है। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की दो महापुरुषों के विषय में। कौन कौन? महेश पंडित और उदाहरण दत्त ठाकुर, है ना। और उदाहरण दत्त का जो है विशेष महत्व हमारे प्रभुपाद के वंश, प्रभुपाद जो है उनके वंश सज हैं, है ना। प्रभुपाद के वंशधर हैं, प्रभुपाद वंशज हैं, और प्रभुपाद के वंशधर उदाहरण दत्त हैं, है? स्वर्ण वणिक हैं, सोने का व्यापार करते थे, और प्रभुपाद ने भी सोने का व्यापार किया, है ना। पूरी दुनिया में स्वर्ण वणिक आए थे कलकत्ता में सोने का व्यापार करने के लिए, और प्रभुपाद ने सोने का व्यापार किया पूरी दुनिया में, और ज़्यादा अच्छा सोना, सबसे बढ़िया सोना, क्या है वो? हरि नाम और गीता का संदेश, भागवत का संदेश, और प्रभुपाद की पुस्तकें सोना। आप लोग भी सोने का व्यापार कर रहे हैं, ये पुस्तकें जो प्रभुपाद की हैं वो आप देते हैं, है ना। उसके बदले में जो पैसा लेते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, कीमत तो कुछ है ही नहीं उसकी। क्या कीमत? कोई कीमत ही नहीं है इन पुस्तकों की, ऐसा सुना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई एक दो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी, आप बोलिए। छठे गोपाल हैं वसुदामा, धनंजय पंडित, गौर लीला में धनंजय पंडित, और बारे में है कुसुमा साहब, और उनके गौर लीला में है खोल बेचा श्रीधर। हाँ, इनका प्रश्न अच्छा है कि मधुमंगल बारह गोपालों में नहीं आते? नहीं, बारह गोपालों में नहीं आते मधुमंगल। मधुमंगल जो है प्रिय नर्म सखा है, ये हंसाने वाले हैं कृष्ण के, ये उनसे भी ऊपर हैं। मधुमंगल जो है ये तो गोपाल थे ना, ये तो गोपाल थे, और मधुमंगल थे ब्राह्मण, मधुमंगल ब्राह्मण थे, तो मेरे ख्याल से गौएं नहीं चराते थे, वो तो पूजा कराते थे अपने, और लड्डू खाते थे, लड्डू छीन करके, लड्डू चुरा करके, जैसे भी लड्डू खाना, केवल एक काम था उनका, लड्डू खाना, है ना। अपने ब्राह्मण का जो है जो लाभ है वो उठाते थे ब्राह्मण पने का। मधुमंगल जो है गोपाल नहीं है, ब्राह्मण है। हाँ जी, अच्छा, आप गौड़ देश कौन कौन सा स्थान? हाँ, वो देखना पड़ेगा, कौन कौन से स्थान आते गौड़ देश में। गौड़ देश बताया तो गया है, नवद्वीप है, और कौन कौन सा स्थान है? हाँ, कुछ बंगाल का एरिया और कुछ और भी आसपास के एरिया जो है गौड़ देश के अंदर आते हैं। नितिन प्रभु गौड़ देश में जाते थे, तो ये सब जो है एक चाका उनका जन्म स्थान है, और सप्तग्राम और भी कहाँ कहाँ गए, खड़दा, खड़दा में नितिन प्रभु का जो है फिर विशेष स्थान बना रहने का, खड़दा भी गौड़ देश के अंदर आता है। तो सब देखना पड़ेगा गौड़ देश, ये गौड़िया संप्रदाय भी कहलाता है, गौड़ से गौड़िया संप्रदाय भी कहलाता है। जी, और कोई प्रश्न? आपका प्रश्न? हाँ बोलो प्रभु, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मधुमंगल कौन है वो देखना पड़ेगा, कि मधुमंगल गौर लीला में आए कि नहीं आए वो देखना पड़ेगा। ये सब जो गोपाल हैं वैश्य जाति के, ये सब आए ब्राह्मण के परिवार में, इन सब ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, है ना। लेकिन गोप का जो है चेतना इनकी उस तरह की पिछले जन्म की चेतना रहती थी, जैसे महेश पंडित इसमें ब्राह्मण है, ये ढक्का बजे तो नृत्य करते थे, तो गोप के भाव में नृत्य करते थे, तो इस चेतन मतलब कृष्ण की जो लीला है उसमें आ जाते थे। अगर नगाड़ा बजेगा तो कृष्ण की लीला की चेतना में आ जाते और नृत्य करते थे। तो इस सब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, जितने भी गोप हैं है ना, श्री चैतन्य भी हैं ब्राह्मण परिवार में, और उनके जितने गोप सखा हैं सब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। अब मधुमंगल पहले से ब्राह्मण, तो वो क्या बने वो देखना पड़ेगा। जो पहले से ब्राह्मण था वो क्या बनेगा, जितने गोप थे वो तो ब्राह्मण बन गए, अब मधुमंगल ब्राह्मण पहले से थे तो वो क्या बने वो देखना पड़ेगा। ठीक है, गौर नेताई नहीं, षडभुज तो बताया गया, षडभुज चैतन्य की वो पूजा करते रहे ये तो बताया गया, गौर नेताई फिर बाद में आए होंगे। ठीक है ना, श्रीला धर्मनंद ठाकुर तिरो भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रीला महेश पंडित तिरो भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधिका रमन की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय हो। हरिओम।